ओम शांति। हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी उपस्थित हैं। हम करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। शाश्वत सत्य दिव्यता की ज्योति, आध्यात्मिक तेजस्विता और आत्म कल्याण की प्रतिमूर्ति, बेहद निरहंकारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी केवल एक नाम ही नहीं अपितु एक आध्यात्मिक प्रकाश पुंज हैं, जिनकी दिव्य उपस्थिति मात्र से वातावरण दिव्यता और पवित्रता से भर जाता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपने स्वयं को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। उससे पूर्व दिल्ली की पंजाब यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातक शिक्षा आपने पूर्ण की। ईश्वरीय सेवाओं के आदि रत्न आपने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है। योग की गहन अनुभूतियों द्वारा और ज्ञान के चिंतन की ऊंचाइयों से आपने असंख्य आत्माओं को परमात्मा सानिध्य का अनुभव कराया है। आप केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में शिव बाबा का ज्ञान प्रकाश फैलाने वाली दिव्य मूर्ति हैं। प्रारंभिक काल में जयपुर सहित कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त आप बने। सन 1974 में दादी जानकी जी के साथ लंदन गए और 110 से भी अधिक देशों में आपने ज्ञान गंगा प्रवाहित की। 1996 में आप जर्मनी गए और फ्रैंकफर्ट में ब्रह्म कुमारीज के राष्ट्रीय समन्वय कार्यालय के डायरेक्टर बने। 2018 में आपको लंदन के संसद भवन में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2023 में 81 वर्ष की आयु में आपको ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त प्रशासनिक प्रमुख और ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। आपका तेजस्वी जीवन, दिव्य आभा आज भी उतनी ही ऊर्जावान और प्रेरणादायी है। आज अपने अनुभवों के ज्ञान रत्नों के खजाने से आप हमें एक बहुत ही सुंदर विषय पर मार्गदर्शन देंगी, एकांत और एकाग्रता की विधि। एकांत और एकाग्रता की विधि आपके लिए चंद लाइन कहना चाहूंगी। आप ज्ञान सागर की गहराई में जाते जाते अनुभवों के मोती चुकते चुकते योग की ऊंचाइयों में उड़ जाते हैं। निरहंकारिता से सेवा में भर भर प्यार बरसाते हैं, धवल सरल मुस्काते हैं। मन को एकांत की गहराई और एकाग्रता की शक्ति सिखाते हैं आप। इसलिए आज इस सुंदर विधि का रहस्य बताने हमारे बीच आए हैं आप। आदरणीय सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। सच्चिदानंद बाबा ने सत्यम शिवम सुंदरम, शिव परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को एकांतवासी भी बनाया है और संगठन में रहना भी सिखाया है। संन्यास धर्म में अथवा भक्ति में मनुष्य समझते हैं एकांत मिले तो भगवान को याद करें, कई ज्ञानी बच्चे भी ऐसे ही समझते हैं, एकांत तो मिलता ही नहीं है, इतने बिजी हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, समय नहीं मिलता है। भगवान को याद कैसे करें? परंतु एकांत का अर्थ क्या है? एकांत का अर्थ कोई जंगल में जाकर के बैठना, कोई गुफा में जाकर बैठना, किसी कोठरी में बैठ करके तपस्या करना, वो तो भक्ति मार्ग में साधन अपनाए। पर बाबा से मिलन मनाने का अनुभव नहीं किया। जब एक बाप ने भक्तों से अथवा भक्ति मार्ग के शास्त्रों में मनुष्यात्माएं जो परमात्मा का मिलन का सुख अनुभव करना चाहते भी हैं, तो ऋषि मुनियों ने यही कहा, अनंत है, बेअंत है, प्रभु का अंत नहीं पाया जा सकता। परंतु बाबा ने हम बच्चों को अपना भेद स्वयं सुनाया। वैसे कोई किसी की गहराई को न जान सके, कहते इसका अंत नहीं, भाई हमको तो इसका अंत नहीं पाया जा सकता, यानी उनकी सच्चाई का अनुभव नहीं है। परंतु परमात्मा सच्चिदानंद ने पहले तो यही बात समझाई कि एक पिता परमात्मा जैसे आज बाबा की मुरली में था, कि परम पिता तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, परम आत्मा परम पिता। तो परम पिता परमात्मा के साथ जब हम आत्माएं उनके द्वारा दिए गए परिचय के अनुसार, भगवान ने खुद जो अपनी पहचान दी है, मेरा नाम क्या है, अनेक नाम बेशक कहे हैं, ईश्वर को खुदा कहो, भक्तों ने रुद्र भी बोला शिव के बदले, कल बाबा ने कहा रुद्र भी नाम बोलते हैं, इच्छा पूर्ण करने वाला ईश्वर भी है, स्वयं अवतरित होता है, स्वयं भू पर आता है, एक शिव ही है जो मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, स्वयं भू शिव शंभू, यानी स्वयं भू पर आता है, ये दो शब्द मिलकर के एक हो गया शंभू। तो वो जब स्वयं भू पर आता है शिव, तो अपना पूरा परिचय देता है। तो एक पिता परमात्मा के कर्तव्य को आदि मध्य अंत को जानने से मन ऑटोमेटिकली एकांत हो जाते हैं, यानी कंसंट्रेशन जो है, भले कितना भी बाहर का विस्तार शास्त्र पोथियां पुस्तक पढ़े हुए थे, अभी हमको पता चल गया है कि वो बेअंत धाम में रहने वाला है, अखंड ज्योति मह तत्व का वासी है। और जहां बाप रहते हैं वो हमारा घर है। तो बाबा ने न केवल अपने असली स्वरूप का ज्ञान दे करके ध्यान टिकवाया वहां पर। एकांत किस लिए बैठते हैं एकांत में? भाई ध्यान लग जावे, मन जो इधर उधर भागता है, व्यर्थ चिंतन में चलता है, पर चिंतन में बिजी हो जाता है, दोष दर्शन में अपना समय गंवाता है, उसमें हमारा समय व्यर्थ न जावे। तो ये पांच तत्वों की प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना है, इस भान का अंत करना ही एकांत है। इस शरीर, ये पांच तत्वों का बना हुआ पुतला, संसार की मुख्य रचना पांच तत्व ही है। पांच तत्व के अनेक खिलौने बने हुए हैं जो आकर्षित करते हैं, डिस्टर्ब भी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं। इस बेहद के खेल का रहस्य समझ में आ गया और प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति में स्थित हुए तो ये बाहर की दुनिया का अंत हो करके व्यर्थ चिंतन पर दर्शन से मुक्त होके एक की गहराई में चले जाएंगे, यानी एक के रस में अंदर डूब जाएंगे, आनंद लेने लगेंगे। ब्रह्मा बाबा ने नए संसार की रचना की, बाबा परम धाम से आकर के साकार वतन में ब्रह्मा बाबा को आज कहा ना, तुम्हारी रचना के लिए, रचना तो मां द्वारा होगी ही, तो ब्रह्मा मां है, तो मां बाप की गोद में जब बच्चा बैठा है तो शांत और एकांत है, पर उसमें परेशान नहीं है। इंसान को एकांत क्यों चाहिए? दुनिया की आवाजें कानों में डिस्टर्ब करती हैं। एकांत किस लिए चाहिए? शोरगुल में एकाग्रता नहीं आती है, कंसंट्रेशन चाहिए। तो एकांत और एकाग्रता, इन दोनों का आपस में बहुत संबंध है। जैसे आपके पास 500 रुपए का नोट है तो दोनों साइड अगर एक्यूरेट हैं तो करेंसी की वैल्यू है। ऐसे ही एकांत, एकाग्रता और एकांत, एक बाबा का अंत पा लेना, भेद को समझ जाना कि बाबा कौन है, क्या देता है। और योग में जब बैठते हैं तो शरीर के भान से भी भान का अंत करना, उसमें जो प्रकृति के प्रभाव आ गए हैं, हमारे अंदर प्रकृति के प्रभाव से, मनुष्यों के प्रभाव से, संग के रंग से जो अभाव आ गया, कमी आ गई है, एक की याद में उसका अंत करना ही एकांत है। अंतर्मुखी कुटिया में बैठ के और कहीं एकांत की बात नहीं है, गुफा में और कोई गुफा में जाने की बात नहीं है, अंतर्मुखता की गुफा में ही आनंद भी है और एकांत भी है। क्योंकि आत्मा के जो बाहर के जो ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के द्वारा जो देखा, कानों से जो सुना, मुख से जो खाया या मुख से जो बोला, नाक से सूंघा या आकर्षित होकर के कोई वस्तु का वैभव का सुख लिया, वो बार बार बुद्धि खींचेगा। कोई चीज कोई अच्छी लग जाती है तो आकर्षित करती है। तो ये अंतर्मुखी यानी ये ऑर्गन्स हमको बाहर मुखी बनाते हैं, तो अनेकों से संबंध जुट गया तो अंतर रहने नहीं देते। अंतर्मुखता का मतलब ही है कॉन्ट्रास्ट का अंतर देखो, अपने सामने दोनों नक्शे रखो, देह में रहते, देह के संबंध में रहते हुए देह भान से कितने न्यारे रहे हैं, और देह के संबंध में रहते हुए न्यारे रहने के साथ साथ स्नेही सहयोगी और प्रभु के प्यारे बनकर उनको प्रभु का प्यारा कितना बनाया है। न्यारे का मतलब है उनके संस्कार स्वभाव का प्रभाव हमारे पर पड़ा, जैसे पहले पड़ता था जोश आ जाता था, अभिमान आ जाता था, कोई उनकी समस्या आई, मोह जागृत हो गया, दुखी हो गए, चिंता लग गई, चिंतन चलने लग गया, क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन उठने लगे, तो बुद्धि ना एकाग्र हुई ना उसका अंत कर सके व्यर्थ चिंतन का। तो प्रकृति के पांच तत्व से या पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियों की से साक्षी होकर के न्यारा रहना, बाहर मुखी से अंतर्मुखी हो जाना। तो ये कान है भी सही पर सुनी अनसुनी हो जाएगी, क्यों, ये एकाग्रता एक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बाबा की आज्ञा क्या है, देह से न्यारे हो जाओ, तुम तो शरीर ही है, दुखी हो गए, कोई न कोई बीमार है, कोई ने शरीर छोड़ दिया, ज्ञान की कमी के कारण बुद्धि ने, तो मन व्यर्थ चिंतन चलने लगा, अंतर का जो मुख है वो बाहर के वातावरण को देख नहीं सका, दृष्टि में सीन बदल गया, परिस्थिति बदल गई, स्वस्थिति बिगड़ गई। तो अभी अंतर्मुखी है तो हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो दुनिया परिस्थिति को कैसे देखती है और हम परिस्थिति को कैसे देखते हैं। अपनी पढ़ाई से अपनी चेकिंग करना, चेकिंग करना, जैसे स्कूल के बच्चे भाई बाबा कहते एकांत में जाकर पढ़ते हैं, बगीचे में जाके पढ़ते हैं, तो हमको भी बाबा ने ये ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा करके भीड़ में रहते हुए भी अकेला रहने का अभ्यास सिखाया है। दुनिया छोड़ के तो जाने वाले नहीं, संसार में यही रहना है, परिवार में भी यहां रहना है, पर अंतर क्या है, दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार और संस्कार को बदल देना है। अंतर्मुखी बनना माना दृष्टि आंतरिक दृष्टि से देखा तो आत्मिक भाव से देखा, कानों से कुछ सुना तो बुद्धि ने निर्णय किया ये व्यर्थ है, मैं इसके विस्तार में क्यों जाऊं। सार रूप में कारण क्या है, वो नाराज है, उनमें आत्मा में शक्ति नहीं है, तो हम कभी भी गन डालते हैं, डिटैच हो गए, साक्षी दृष्टा हो गए, तो बुद्धि ने बाबा को साथी बना लिया, तो बेशक व्यर्थ आसपास बहुत चल रहा है, व्यर्थ में भी एक के संबंध से, एक के संबंध से, एक की शक्ति से, एक बाबा के योग बल से व्यर्थ का अंत कर देते हैं। व्यर्थ की भीड़ है, पर चिंतन के दृश्य उससे परे साक्षी दृष्टा होकर के देखना। तो जो बाबा की शिक्षाएं हैं, जब अंतर्मुखी हम हो जाते हैं तो बाबा की शिक्षाएं हमारे को बाहर के सोचने में, अज्ञानी कैसे सोचता है और ज्ञानी कैसे सोचता है, तो अंतर का जो मन है वो बाबा से बोलना शुरू कर देता है, पर चिंतन नहीं करता, मन चिंतन करता है ना, मन मन अभव हो गए, अंतर्मुखी स्थिति माना ही मन मन अभव। पर कैसे करें, वो बुद्धि का मन का घोड़ा जो व्यर्थ दौड़ रहा है तो उसकी लगाम अथवा अंकुश अपने हाथ में रखने, तो मतलब बाबा के साथ प्रेम से ओम शांति। तो मैं आत्मा शांत तब रह सकती हूं जब मेरा संबंध बाबा के साथ प्रेम भरा संबंध है, और जिसके साथ प्रेम होता है भीड़ में बैठे हुए भी आप उनके लिए सोच रहे हैं, आपको कोई अट्रैक्शन और टेम्पटेशन नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा हमारा योग कोई त्याग, परिवार का त्याग या हद का वैराग नहीं है, बेहद का वैराग है, पुरानी दुनिया का त्याग है, संस्कारों का संन्यास है, पुराने संस्कारों का। तो एक्चुअली रोज की बाबा की मुरली से अगर हम उसके सार को समझ लिया, अंतःकरण हो गया, अंदर चला गया, तो बाकी बातों का अंत हो जाता है। कानों से खाली सुना फिर और चिंतन चलने लगा, अंदर गया नहीं, मन ने मंथन नहीं किया, मन को अच्छा तो लगा हाँ बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, क्लास बहुत अच्छा था, पर जो अच्छा अलग होता है तो उसको लेने की इच्छा होती है ना, उसको अपना बनाने की इच्छा होती है। तो अभी हठ योग का हमारा एकांत नहीं है, हमारा व्यर्थ को खत्म करके व्यर्थ की भीड़ को, व्यर्थ की भीड़ से परे अथवा क्राउड और आवाजों से परे अंतर्मुखता की गुफा में बैठे तो मन 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 में प्रभु चिंतन और मनन चलने लगेगा, तो मन बाबा में बात करने में बिजी हो जाएगा, तो बाकी बातों को मना हो जाएगी ना। मन मना भव, मन को मना कर दो, मैं मन का मालिक हूं। कैसे मालिक बने? जब बुद्धि के पास समझ हो। बाबा ने समझ दे दी है, अभी हमको किचरा अंदर नहीं रखना है, हमको तो मन को मंदिर बनाना है, या हमको अपने जो असली मंदिर है, आज बाबा ने बताया ना परमधाम क्या है, परमधाम पहले नंबर का मंदिर है, शिवालय है, जहां बाबा भी रहते हैं और जहां महात्मा भी रहती है। तो मेरे को अगर अपने घर में बैठे हुए शांति धाम में शांति स्वरूप में आत्मा हूं, वहां तो आवाज आई नहीं, परंतु क्योंकि मैं देह के भान प्रकृति का आकर्षण बहुत ज्यादा है, तो प्रकृति के आकर्षण के प्रभाव में आकर के अशरीरी बनने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है। अभी यही प्रैक्टिस करनी है कि इस एक देह के भान से, इस एक मैं फलाना हूं तो अब मैं अपनापन, इस मैंपन का अंत, इस मैं का अंत हुआ। मैं है तो दोनों बातें, मैं शरीर भी की पहचान भी मैं फलाना हूं और आत्मा की पहचान भी मैं फलाना हूं, परंतु अंतर ये है कि जब मैं देह के भान में हूं तो व्यर्थ बहुत साथ में आ जाता है। ये जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय हैं, वो रबिश कलेक्ट कर लेती, व्यर्थ बातें जो बोझ बना देती है, बोझ झेल कर देती है, ऊपर उड़ने नहीं देती। तो एक अपने असली वतन में जाने के लिए शांति धाम एकांत में जाना है, किस लिए? शांति से बैठ सके। तो एकांत तो शांति धाम में ही है, जहां सब पांचों ही तत्व का अंत है। कर्म इंद्रिया भी नहीं है तो ज्ञान इंद्रिया भी नहीं है, प्रकृति के तत्व का खिंचाव नहीं है, देह ही नहीं है तो देह का लगाव नहीं है, आत्मा बीज रूप बन गई, कर्म रूपी वृक्ष से, कर्म इंद्रियों के वृक्ष से जो कर्म फल थे वो उससे भी न्यारे हो गए, बीज फिर से पेड़ से फल से भी अलग हो गया। जब देह में है, अवस्था कच्ची है, तो कच्ची चीज खट्टी भी होती है और सख्त भी होती है, पक्की चीज मीठी भी होती है और कोमल भी होती है। आम कच्चा है, सरोते से काटो ना तो भी गुठली से अलग नहीं होगा, क्योंकि गुठली को पता है ये मेरा गूदा है, पर जितना जितना सूरज की शक्ति मिलती गई, पकता गया, तो जितना जितना अंदर ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। बाबा ने कहा तुम समझो मैं मेहमान हूं, तो मेहमान हूं तो थोड़े समय ये पर ये मेरी प्रकृति मेरी नहीं है, ट्रस्टी हूँ, ग्रस्ती हूँ, नहीं हूँ पर ट्रस्टी हूँ। मतलब एकांत के लिए एक बाबा की जो बातें रोज हम सुनते हैं उसकी गहराई में चले जाना, सिंपल बात है। इस संसार में आवाज की दुनिया है, आवाज तो रहेगी सही, पर आवाज से परे अपना जो शांति धाम घर है योग युक्त स्थिति में, उसमें हम स्थित हो गए। इसीलिए योग युक्त हो करके प्यार से बाबा को याद करने से बाकी सब बातों का अंत हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, और ही बड़ा परिवार बनाया, छोटा परिवार तो लौकिक परिवार तो था ही, पर बाबा ने तो बेहद का परिवार बनाया, और रूहानी नशा भी रहा, मैं कौन हूं, किसकी वन्नी हूं, किन बच्चों का बाप हूं, प्रजा का पिता हूं, परंतु उसमें बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है। बाबा के साथ संबंध जोड़ने का जो नशा और निश्चय रहा, तो बेहद के परिवार में रहते भी बाबा चलते फिरते उठते बैठते फरिश्ता रूप रहा, यानी रिश्ता बदल गया, बोझ उतर गया, बंधन खत्म हो गया। क्यों, क्या ज्ञान को गहराई में लिया, ड्रामा को समझा, तो क्यों क्या कैसे का भीड़ जो बुद्धियां भर जिस भीड़ में भटक गए थे वो भीड़ खत्म हो जाती, ड्रामा को डिटैच होके देख रहे। फिर दूसरा साइड है कि सब कुछ बिल्कुल एकाग्रता से रख, तो एकाग्रता कंसंट्रेशन कोई फोर्स से नहीं होती, कंसंट्रेशन का आधार इंटरेस्ट है। अभी आप देखो जिन बच्चों को या खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का मैच देखने का शौक है, कितने स्टेडियम फुल भरा हुआ है, आवाज भी हो रही है, परंतु उनकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली हुआ है, आनंद आ रहा है ना। बच्चों को वैसे शोर मचाते रहेंगे, उनको उनके आनंद की चीज सामने दे दो, एकाग्र हो जाएंगे। बिजनेसमैन है, कितना भी घर में भीड़ बातचीत चल रही है, वो अपना बिजनेस टेलीफोन पर कर रहे हैं, एक ही कमरे में बच्चे भी बैठे हैं, खाना भी पक रहा है, घर भी चल रहा है, तो क्या है कि इंटरेस्ट जिस चीज में है तो बाकी चीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। तो ये जो बाबा का वरदान अथवा शिक्षा है, दे तथा दे के संबंध से न्यारे होकर एक मनमना भाव और लक्ष्य में इंटरेस्टेड हो जाओ। पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ाई का लक्ष्य मेरा, हम किस में इंटरेस्टेड है, अपने भविष्य को बनाने में इंटरेस्टेड है, उसमें प्रेजेंट भी बन रहा है, भविष्य भी बन रहा है। परंतु दूसरी बात, हमारी कंसंट्रेशन तब होता है जब एकाग्रता, जब जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी है। मिसाल के तौर पर पायलट प्लेन चला रहे, उसकी जिम्मेवारी है, वो एकाग्र है। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चला रहा है, हमको पता है कि एक्सीडेंट भी होते हैं, प्लेन भी कभी फेल होता है, तो भी विश्वास रख करके उसकी एकाग्रता के कारण हम फिर भी प्लेन में बैठते हैं ना। तो ऐसे हमको, हमारे को बाबा ने जिम्मेवारी दी है अपने भविष्य को अभी बना के 5000 साल का खाता तैयार करने की, परंतु उसमें लक्ष्य का इंटरेस्ट हो, ऐसा बनाना है। ऐसे नहीं कि अच्छा सतयुग में तो चले जाएंगे ना। बाबा ने कहा है ना, थोड़ा भी ज्ञान लिया है सतयुग में तो आ जाएंगे, तो इसको आ तो जाएंगे, चल तो रहे हैं। तो सुस्ती है मन की, मन सलेजीनेस है, हो तो जाएगा, मैं कर तो सकता हूं, परंतु 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 और तो ये पर परंतु पर काट देता है, पर चिंतन पर काट देता है, स्वचिंतन खत्म हो जाता है, प्रभु चिंतन खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आनंद आएगा, रूहानी रस में हम रम जाएंगे। कोई भी चीज खींचती तभी है जब उसके महत्व का पता है। तो हमको भी अपने भविष्य के महत्व का, भविष्य की प्राप्ति का, लक्ष्य का बिल्कुल क्लैरिटी है। लक्ष्य सामने है तो कंसंट्रेशन है। मानो हमारा कपड़ा मैला हुआ है, कोई कहते पर टाइम तो लगेगा ना, कंसंट्रेशन में भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा ना, 5000 साल लगे हैं इधर उधर मन बुद्धि वैराग भटकने में। पर बाबा ने कहा 5000 साल चढ़ने में लगे हैं, उतरने में लगे हैं, स्पीड़ी पौड़ी सीढ़ी सीढ़ी उतरे, चढ़ने में तो सेकंड की रियलाइजेशन है, लिफ्ट मिलती है, कपड़ा मैला होता है। बाबा पर विश्वास करे तो मन में निश्चय हो, बाबा ने जो कहा है उसको, उस पर कंसंट्रेट करे, इतना इंटरेस्ट हो आगे करने का, तो टाइम निकल आएगा और दृढ़ता से सफलता मिलेगी। अब कपड़ा मैला होता है, सारा दिन पहनो बाहर चले जाओ, कपड़ा मैला हो गया, धोने में सारा दिन चाहिए, 10 मिनट में कपड़ा धुलाई हो जाएगा, 10 घंटे लगा मैले होने में। तो भले हमको, परंतु वो इतना जितना फिर अच्छी क्वालिटी कपड़ा तैयार किया, जल्दी मैला भी नहीं होगा। कहा ना सतयुग में चले तो जाएंगे ना, प्रजा भी बन गए, दास दास भी बन गए, स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना, परंतु फिर उसका राज, अंत का मतलब राज को जानना, अंत पा लेना। तो आदि से लेके अंत को ध्यान में रखे, एक बाबा याद रहे, आदि से अंत तक याद रहे। तो आदि में मानो मैं प्रजा में आ गया, मेरे अंदर शक्ति कितनी होगी, राइट, राजा ही रहे, मेरे अंदर रॉयल्टी रहेगी, डिविनिटी होगी, पवित्रता की शक्ति पूरी, सारा कलप चलेगी, पर उस समय सुखी रहेंगे सतयुग में, वातावरण ही शुद्ध है, प्रकृति शुद्ध है, प्रकृति सतो प्रधान है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बन गए हैं। परंतु अगर वो हमने सिर्फ सबके सहयोग से प्रकृति की शुद्धता से और बाबा के वरदान से हम सतयुग में आ भी गए पर स्व स्थिति नहीं बनाई, एकाग्रता से और एक रस स्थिति से और एक लक्ष्य से, अंतर्मुखी स्थिति से, तो वो ताकत यानी मजबूती नहीं आती अंदर। आत्मा के 16 कला संपूर्ण मतलब 100% नहीं बनता। मिसाल के तौर पर एक मकान आपने लिया, उसमें आपने पर्दे लगाए, आपने वेलवेट के पर्दे लगाए, दूसरे मकान में आपने साटन के कपड़े लगा दिए, तीसरे मकान में कॉटन के लगा दिए, चौथे मकान में या एक ही मकान में चौथे कमरे में आप पापलिन के लगा दिए, पांचवे कमरे में प्लास्टिक के लगा दिए, पर्दा तो लग गया ना, पर्दा वेलवेट का भी पर्दा ही है, प्लास्टिक का भी पर्दा है और कपड़े का भी पर्दा ही है। अब वो मैला और फटेगा कितने समय में? कपड़े का पर्दा एक ही हवा का झोंका आया फट जाएगा। मोटी चीज होगी मजबूत होगी, कोट पैंट पहनते हो रोज धोते हो क्या? एब्जॉर्ब नहीं करता डस्ट। साधारण कपड़ा होगा पतला होगा एब्जॉर्ब कर लेगा डस्ट। तो द्वापर में जब हम आते हैं तो आदि से अंत तक का फल हमको जमा करना है। इसीलिए पहली बात है एकांत का मतलब है एक ही बात का अंतर करना है, अंतर और एकांत, एक का उसकी गहराई में जाना है और अंतर समझना है कि अगर मैं संपूर्णता की स्टेज को पाया तो वो आत्मा में ताकत जैसे वेलवेट का कपड़ा, मखमल का पर्दा या मखमल का सूट, शादी में पहले मखमल का सूट ही देते थे, घर में भी मखमल के कपड़े देते, बहुत साल चलते हैं, ऑर्डिनरी पैसा होगा कपड़ा थोड़े साल चलेगा, एक धुलाई में दो धुलाई में खत्म हो जाएगा। तो सत्य एक कलप सतयुग में थोड़े अंत में आएंगे, त्रेता में और ही थोड़ा सुख पाएंगे, द्वापर में जल्दी गिर जाएंगे, प्रकृति का प्रभाव पड़ जाएगा। तो दोनों ही बातें जो शब्द है एकांत और एकाग्रता, एकांत में एक बाबा द्वारा दी हुई बातें और एक बाबा का पूरा पूरी पहचान में निश्चय, नाम रूप गुण कर्तव्य धाम प्राप्ति संबंध और मिलने का समय, यह 8 बातें अच्छी तरह से अगर अंदर बैठ गई बाकी बातों का अंत हो जाएगा। बाबा मेरा बाबा है, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाकी बातों का अपने आप बाकी मेरे खत्म हो जाते हैं। एक मैं बाबा बाबा मेरा तो हृदय के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होने से, जैसे प्रेमी लौकिक प्रेमी भी भीड़ में होते भी अपने को अलग समझते हैं, तो बाहर होते हुए भी एक के साथ में हूं दुनिया को देखते भी नहीं देख रहे। और इस देह भान के अंत से आई, इंग्लिश में लिखो ना आई, बड़ी आई, हुक लगाओ तो उसके सिर पर, और हुक में बहुत सारी चीजें लटकी होती हैं, लटका सकते, और छोटी आई में छोटी आई लिखो उसके सिर पर क्या है? बिंदु है। वो बड़ी आई है ना, उसमें वाई व्हाट वेयर हाउ, ये बहुत सारी बातें लटकी हुई है, वो एकाग्रता को खत्म कर देती है। वो है तो बात एक ही, आत्मा की, मैं आत्मा हूं या मैं मनुष्य आत्मा हूं या मैं परमात्मा की संतान हूं या मैं देवता कुल की आत्मा हूं। वो स्मृति की गहराई आ गई तो जितनी गहराई आई उतनी गहराई नीचे उतनी बिल्डिंग ऊंची। सागर में जितना नीचे चलते जाओ गहराई से बाहर की लहरें असर नहीं करेंगी। इसीलिए बाकी बातों का अंत और बाबा के परिचय का, संबंध का, प्राप्ति का, मिलन के समय का, उनके कर्तव्य का, ये अगर अंत पा लिया है, दे भगवान ने तो अपना अंत दे दिया है ना, इतनी सारी मुरलियां साकार क्या बताती हैं। ये पिछला जो भरा हुआ है ना उसको निकाल के अंत कर देना और बाबा से आदि कर देना, अपने आप को उसे भरपूर करना और फिर उसका रस लेते रहना, तो एकांत होते नीरस नहीं लगेगा, एकांत होते भी रूहानी रस आनंद के झूले में झूलते रहेंगे, मन खुशी के गीत गाता रहेगा, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह परिवार वाह, वाह संगम युग वाह, अपने आप ही दिल से गीत गाएंगे। तो दोनों शब्दों के अर्थ की गहराई में जाए, एकाग्रता एक की आज्ञा है, मन मन भाव मध्य जी भाव, तीनों मंत्र पक्के करो, मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो, मन मेरे जैसा बना दो। मैं किसी के मन का खोट नहीं रखता अपने मन में, बच्चों मुझे पता है बच्चे मैले हो गए हैं, पतित बन गए हैं, फिर भी मैं पवित्रता पवित्र आत्मा है, ये तो देवता कुल की आत्मा है, ये तो डबल साजधारी बनने वाले हैं। वो हमारे सिर पर जो काटो का ताज और टोपी है पोजीशन की, बाबा को वो नजर नहीं आती, अहंकार का मुकुट पहना हुआ नजर नहीं आता, लाइट का क्राउन नजर आता है, क्योंकि बाबा ने हमको हाय मेरी तकदीर और बाबा को हमारी तकदीर की लकीर चमकती दिखाई देती है। हमको डाउट और अंधेरा नजर आता है दूसरे में और बाबा को उनका चमकता सितारा नजर आता है। तो मेरा मन ऐसा है, मन को मेरे जैसा बनाओ, एक की आज्ञा का पालन, एकाग्रता हो जाएगी ना। और देहभान और पुरानी दुनिया की जो भी हमने प्रॉपर्टी इकट्ठी की हुई थी, रावण की प्रॉपर्टी, पराई प्रॉपर्टी को तलाक, रिश्ते का अंत हो गया, रास्ता बंद कर दिया, अंदर रूहानी रस में मैं और मेरा बाबा रास करते रहेंगे, रूहानी रस लेते रहेंगे, आनंद का झूला झूलते रहेंगे। तो बैलेंस है दोनों का, दोनों बातें बैलेंस ले आती हैं तो ब्लिसफुल लाइफ रहती है। इसीलिए ये योग भी है, ज्ञान है, उसमें धारणा समाई हुई है, सेवा समाई है, चार रस्सियों का झूला आनंद का झूला है, चार ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल पालना में अवस्था ऑटोमेटिकली एक रस हो जाती है। एक की आज्ञा पर चलने से आत्मा को निर्भय, सच्चाई पर श्रीमत पर चले भय खत्म हो जाता है, सच्चिदानंद सच परमात्मा को मन चित्त में और बुद्धि में बिठा लिया, आनंद ही आनंद है, भले भीड़ में भी खड़े हो। इसीलिए ऐसे रूहानी रस को लेने वाले फिर से कहेंगे ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद। ओम शांति, प्रेम से बाबा को याद करने वाले, एक की लगन में मगन रहने वाले, व्यर्थ को अंत करने वाले। तो ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम शांति।
ओम शांति, बहुत 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 धन्यवाद दीदी। कैसे आपका शुक्रिया करें, इतना उमंग उत्साह आपने सब में भर दिया है। एकांत और एकाग्रता की विधि हमने आपसे सीखी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी।
इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।
मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।
सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का, हमको अनुपम ज्ञान दिया।
जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का, हमको अनुपम ज्ञान दिया।
ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।